नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलदार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पद चाप गूंजे, मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दे, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशाले जीत की जलती रही है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।
ओम शांति। चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना, चरैवेति चरैवेति हमारी प्रेरणा भास्कर है, जिसका रथ सतत चलता, युगों से कार्यरत है, जो सनातन है प्रबल ऊर्जा, गति मेरा धर्म है, जो भ्रमण करना यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना, चरैवेति चरैवेति हमारी प्रेरणा भारत है, भूमि की करे पूजा, सुजल सुफला सदा स्नेहा, यही तो रूप है उसका, जिए माता के कारण हम, करे जीवन सफल अपना, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना, चरैवेति चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना, जीवन सतत प्रवाह है, रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, हजार बार गिरना पड़े, हजार बार हार हो जाए, दुखी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, जब जब गिरो फिर खड़े हो जाओ, शुभंकर मंत्र है ये, नहीं रुकना नहीं थकना, चरैवेति चरैवेति अर्थात मूव अहेड, आगे बढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो, नहीं थकना, सतत चलना, सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना। शुभंकर मंत्र है अपना। शुभंकर अर्थात, शुभंकर किसको कहते हैं? मैस्कॉट पता है ना अंग्रेजी में, मैस्कॉट। शुभंकर चित्र होते हैं ना घर में रखे जाते हैं, स्वास्तिक, कलश और कछुआ और वो लॉफिंग बुद्धा और स्टोन्स, कुछ कार्टून्स, वो क्या कहते हैं शंख, उसे शुभंकर कहा जाता है। ये शुभंकर मंत्र है जिससे शुभ हो। कौन सा मंत्र है? आगे बढ़ते जाना। चरैवेति चरैवेति, यही तो शुभंकर मंत्र है अपना। आगे बढ़ते जाना, सतत बढ़ना, सतत बढ़ना, सतत चलना, नहीं रुकना, नहीं झुकना, नहीं थकना, बस बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। कितनी बार गिरे हैं इसका हिसाब लगाते नहीं बैठना है। मार्क सीधा इस आधार से भी नहीं मिलेंगे, इसने 15 मुरली सुनी, 1200 मुरली सुनी, 1000 मुरलियां सुनी, इसने 1,00,000 मुरलियां सुनी, इसने 2,00,000 सुनी। आसमान पर कोई शिव बाबा बैठा नहीं है इस तरह से कैलकुलेशन करते हुए, इसने इतना बोला, इतना क्लास किया, इसने इतनी सुनी, इसने इतनी किताबें पढ़ी, इतने प्रोग्राम्स किए। मार्क्स किस आधार पर है? स्थिति के आधार पर, प्यूरिटी के आधार पर। तो भट्टी का आज का कौन सा दिन है? 40वां दिन। 40 दिन लंबा सफ़र है और अभी तक हम कराची में ही हैं। अभी तो आगे भारत में अभी पहुँचे ही नहीं है, भारत में अभी पहुँचे ही नहीं है। इससे पता चल रहा है कि इतिहास कितना गहरा है और इतिहास की एक एक बात कितना हमें सिखाती है। ये था इतिहास की एक एक घटना, एक पाठ है, एक सबक है। और जितना गहराई से हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उतना ही जीवन दिव्य बनेगा। और सबसे ज़्यादा हम जो सीखते हैं किससे सीखते हैं? किताबों से नहीं, घटनाओं से, परिस्थितियों से। कई बार सुन रखा है ये ऐसा हुआ तो अचल अडोल रहो, भूकंप आएगा, परिस्थिति आएगी, प्राकृतिक आपदा आएगी, तुम्हें अचल अडोल रहना है। इन वाक्यों ने इतना नहीं सिखाया, पर वास्तव में जब भूकंप आया और सब हिलने लगा और गिरे इधर उधर, सारा ज्ञान खो गया एक क्षण में, और फिर थोड़ी देर में याद आ गया, तब ज्यादा सीखे। घटनाएं हमें ज्यादा सिखाती है। और एक बात, जीवन हमें सिखाता है, एक अपना खुद के अनुभव और दूसरों के अनुभव, दूसरों का जीवन, चाहे वो व्यक्ति कल भी कहा था जिंदा है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हमने देखा है या नहीं देखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे साथ रहा है या नहीं रहता है, वो नजदीक है या कहीं दूर बैठा है विदेश में कहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमें पता चल जाए कि इसके जीवन में ये धारणाएं हैं, ये ऐसा जीता है, तो अचानक जीवन में परिवर्तन आने लगता है कि वो ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इतना अपमान सहन करने के बाद, इतनी निंदा, इतनी ग्लानि, इतनी पराजय होने के बाद भी वह अचल अडोल खड़ा हुआ है। उसके सामने तो हमारे जीवन के जो विघ्न हैं कुछ भी नहीं है। वो इतना सब कुछ सहन करते हुए इतना अडिग है, हिमालय सा अडिग, तो फिर हमारे जीवन के विघ्न क्या है उसके सामने? हम भगवान से कह रहे हैं, बाबा ये रावण मेरे जीवन में, इसको हटाओ। उसके जीवन में 10-10 रावण है, फिर भी लड़ाई जारी है और हम थक कर बैठ गए। क्यों? मानव कभी कहता है ना, मंजिल बस अब आने वाली है, दूर नहीं है, और हो सकता है जहां हम थक कर रुक गए, बस थोड़ी देर और चलना था, बस थोड़ी सी देर, मंजिल आ गई होती। जैसे अंधेरी रात है, एक व्यक्ति निकल पड़ा है अंधेरी रात में, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पहले से ही रास्ता भटका हुआ है, बिहड़ जंगल है, घटा टोप अंधकार, और उसमें अचानक उसका पैर फिसलता है और वो कोई डाली पकड़ लेता है, और सर्द रात है और भयानक भयानक आवाजें आ रही है, जोर से पकड़ के रखता है, इतना जोर से नीचे देखता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अब तो बस मृत्यु, पसीना ही पसीना, सर्दी में गिरा की गया, पकड़ के रखता है, मरना नहीं है मुझे, कुछ भी हो जाए। रात गुजर जाती है, भूखा प्यासा है, सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, देखता है बस थोड़ी सी दूरी में जमीन थी। रात भर क्या करता रहा, पकड़ा रहा, पर पकड़ के रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पुरुषार्थ का ये मार्ग है, कल कहा था बाबा, पुरुषार्थ अर्थात नेचुरल अटेंशन, सहज निरंतर, सतत चलना। तो कल हमने किसके बारे में देखा था, यशोदा मैया के बारे में। यज्ञ इतिहास में और एक ऐसा पात्र है, द अनसंग हीरो, जिसके बारे में चर्चा कम होती है, परंतु क्योंकि जो लोग आए उनके आने से पहले ये निकल चुके थे। कल हमने कहा था ब्रह्मा बाबा के जीवन में दो ऐसी बातें हुई जो थोड़ी हिलाने वाली है, ये तीसरी भी घटना है। पहली हुई 61 में, यशोदा मैया चली गई, दूसरी हुई 65 में, मम्मा चली गई, और तीसरी हुई 12 मार्च 1968 में। अर्थात इस आत्मा की तपस्या भी का समय काल उतना ही है जितना ब्रह्मा का है, और ये भी बाबा के साथ तप से ही है, शुरुआत से इसकी भी तपस्या कुछ कम नहीं है, जितनी बाबा की तपस्या उतनी ही इसकी भी तपस्या। तो आज हम इससे पहले कि भारत आए, कराची के बचे हुए काम पूरे करने हैं, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा वापस। वैसे तो फिर भी जाना ही है, कई बार जाते रहेंगे, यात्रा जारी रहेगी। तो आज हम देखेंगे विश्व किशोर भाव, इनका लौकिक नाम, इसको जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पांडव भवन जो है जमीन किसके नाम से थी, विश्व किशोर भाव के लौकिक नाम पर थी, बाद में यज्ञ के नाम पर ट्रांसफर हुई, भैरुमल तुलसीदास कृपलानी, भैरु दादा इनको कहते थे, भैरुमल तुलसीदास कृपलानी, उनकी युगल का नाम सावित्री भैरुमल कृपलानी, संतरी दादी। तो ये कौन थे, बाबा के लौकिक बड़े भाई जिनका नाम था तुलसीदास, युगल रामीबाई के सुपुत्र। पर तुलसीदास जो थे उन्होंने जल्दी शरीर छोड़ दिया शायद, इसलिए ये बाबा के लिए जैसे उनका एक क्या था बेटा, इसके लिए घर में दो बहुएं थी, एक तो सावित्री और दूसरी राधिका ब्रजेंद्रा दादी। तो जो कहा कि पांडव भवन की जमीन ये जो है पोखरण हाउस किसके नाम पर था, इनके नाम पर था। और पांडव भवन में कब आए, टाइमलाइन को पकड़ के रखना है, पांडव भवन में कब आया यज्ञ, 52 में, और ब्रिज कोटी में कब आया फिर, फिर एक ही साल रह गया ब्रिज कोटी, 1950 में ब्रिज कोटी, और ब्रिज कोटी में लाने का निमित्त भी कौन सी आत्मा बनी, यही किसको भेजा था पापा ने, इन्हीं को भेजा था। यज्ञ के जितने ये सारे कारोबार है यही देखते थे, जैसे गाड़ी खरीदना, बस, कपड़े, मेंटेनेंस, इनको जनरल मैनेजर जैसा पोस्ट था, परंतु जगदीश भाई ने लिखा है, इनसे जब कोई पूछता था आप इस यज्ञ में आपकी क्या पोस्ट है, क्या आप यहाँ के सेक्रेटरी हो, वो कहते थे मैं यहाँ का मामूली सेवाधारी हूँ। मैं कौन हूँ? यहाँ का एक मामूली सा सेवाधारी हूँ। विनम्रता की मूर्ति, निरंकारिता की मूर्ति, कोई अहंकार ही नहीं, किसी भी बात का अहंकार नहीं। 1954 कहाँ पहुँचे? धौलपुर हाउस और कोटा हाउस, पांडव भवन के जो पीछे है, और शायद 58 या 60 के बीच, कहीं पर डेट लिखी है 58, कहीं लिखी है 60 में पोखरण हाउस, जिसका अभी वर्तमान में नाम है पांडव भवन। तो माउंट में भी तीन जगह है, पहले ब्रिज कोटी से ढोलपुर हाउस, कोटा हाउस, और वहाँ से फिर पोखरण हाउस। पोखरण क्या है? जोधपुर के पास है, वहाँ क्या हुआ था? न्यूक्लियर का सबसे पहला, इंदिरा गांधी, न्यूक्लियर टेस्टिंग कहाँ हुआ है? पोखरण। उसके पहले 1976 से पहले आबू में बहुत भयंकर ठंडी थी, अभी की कुछ भी नहीं है। ये जब फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग हुआ पोखरण, उसके बाद में थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी मतलब अभी जो गर्मी है, अभी जो है माइनस में जाता है टेम्परेचर, वो वाली, उससे पहले अर्थात यज्ञ जब यहाँ आया तब परिस्थितियाँ कैसी थी? अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी, इसलिए तो सब लोग बीमार पड़े बहुत सारे, और कईयों ने शरीर नहीं, यहाँ से निकल गए। कहा कि हम बाद में आएंगे, थोड़ा मौसम ठीक होने के बाद, अब तक इंतज़ार है, पहुँचे नहीं हैं। तो विश्व किशोर धारणाओं की मूर्त, उस दिन भी कहा था जितनी धारणाएं स्ट्रिक्ट होगी उतना क्या होगा, बाबा की मदद मिलेगी। अगर धारणाओं में ही गड़बड़ है तो मदद नहीं मिलेगी। विश्व किशोर भाऊ जब भी कहीं जाते थे तो उनको एक किट दिया जाता था, किट, बाबा ने उनको एक किट दिया था, उसमें बर्तन और खाने की सामग्री सारी वो लेके ही जाते थे, क्योंकि उनको कहीं कहीं घूमना पड़ता था, कभी सिरोही जाओ, कभी मेहसाना जाओ, कारोबार, लिखा पढ़ी, ये ज़मीन की खरीद फरोख्त सब कुछ उनके उनके जिम्मे था, तो वो अपना सामान लेके जाते थे अपने हाथों से, खुद अपना भोजन खुद, किसी का परछाया नहीं पड़ना चाहिए, पता नहीं किस भाव से बना रहा है सामने का व्यक्ति, तो अपना सामान अपने कुमार अर्थात लिया अपना सामान और चल पड़ा बिंदास्त, कोई टेंशन नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है भोजन के लिए, थोड़ा भोजन दे दो, मांगना ही नहीं है, अपना थैला अपने साथ लेके घूमो। यज्ञ जब आबू में आया, जितने पैसे थे लगभग खत्म हो चुके थे, सारा जो स्टॉक था वो भी खत्म हो गया था, तो कितनी बार ऐसा हुआ जब ब्रिज कोटी में थे तो नाश्ता भोजन कहाँ किया, सब यज्ञ वत्सों ने पहाड़ों पर क्या खाया, करवंदे फल, बस यही उनका नाश्ता था, फ्रूटेरियन डाइट, नेचुरल डाइट, कितनी बार ऐसा हुआ होगा। तो सबसे पहली चीज इनके बारे में जो हमने देखी, विश्व किशोर भाव के बारे में, कौन हूं मैं, इस यज्ञ में मेरा स्थान क्या है, एक मामूली सा सेवाधारी हूं, निरंकारी भाव। दूसरा, जहां भी जाते थे वहां अपनी किट साथ में, किसी पर भी निर्भर नहीं, किसी पर भी निर्भर नहीं। तीसरा, बाबा की जहां दुकान थी कोलकाता में, न्यू स्ट्रीट मार्केट, न्यू मार्केट जो है दूसरी मंजिल पर, जिसको गद्दी कहते थे, फिर पहली मंजिल पर और दूसरी मंजिल पर रेसिडेंस था, उसी गली में इनकी भी दुकान थी, क्योंकि इनके पिताजी की तो तुलसीदास एंड सन्स डायमंड की दुकान। तो जब बाबा को वैराग आ गया और बाबा ने अपना सब कुछ समेट लिया, तो सबसे पहले बाबा का अनुकरण करने वाला कौन था? विश्व किशोर भाऊ। उन्होंने बाबा को कहा कि मैं भी आऊँगा आपके साथ, मुझे भी नहीं करना है ये। बाबा ने कहा तुम थोड़ी देर के बाद आना, उसमें भी हाजी। तो बाबा की जो यात्रा है सेम वैसी ही यात्रा विश्व किशोर भाऊ की भी है, वहीं से। उनको भी सेम वैराग, वो भी सब कुछ लेके यहाँ आ गए। कहाँ पहुँच गए? हैदराबाद। और हैदराबाद में उनका जो घर था बाबा के घर के एकदम सामने था। और बाबा एक बार उनके घर में गए थे, सत्संग किया था, तो क्या हुआ था, जितने आए थे सबको कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था। तो अनुकरण में भी नंबर वन, जैसा त्याग उन्होंने किया मुझे भी सेम त्याग करना है। और बिना त्याग के आध्यात्मिक जीवन हो ही नहीं सकता। सुख सुविधाओं में अध्यात्म नहीं पलता है, ना ही खिलता है, ना ही सफल हो पाता है। अध्यात्म के लिए क्या चाहिए? अध्यात्म की आधारशिला क्या है? त्याग, त्याग चाहिए। बाबा के साथ हर समय थे, अर्थात 40 दिनों में हमने जितनी घटनाएं देखी, जो सारी घटनाएं हैदराबाद में हुई, सारी घटनाएं कराची में हुई, बाबा के साथ साथ ये आत्मा भी क्या है, उन घटनाओं के साक्षी है। इन्होंने भी वो सब कुछ देखा है, वो भयंकर विरोध, वो सब कुछ। ही इज द पार्ट ऑफ एवरी सीन ड्रामा के। और जब यहाँ आना था तो बाबा ने जैसे कहा इनको ही भेजा, इसके ऊपर फेथ था। इनको क्या कहते हैं? राइट हैंड, ईमानदार, वफादार, निश्चय बुद्धि। जो कह दिया वो फाइनल, बस बाबा ने कह दिया हो गया। इतना विश्वास बाबा पर। और यहाँ की ये पांडव भवन की जमीन उनके नाम पर थी, लौकिक नाम पर थी। उनको इतनी जल्दी थी कि मेरे नाम से ये यज्ञ के नाम पर आ जाए जितना जल्दी हो सके। उसकी अपनी एक लिखा पढ़ी की कहानी है। दूसरा, रमेश भाई जी सुनाते हैं कि मम्मा बाबा मुंबई आने वाले थे 57। तब एक बार मुझे विश्व किशोर भाई भाऊ लेके गए। मैं कार चला रहा था, वो बैठे। कार चलाते चलाते फिर बीच में कहा, अरे मेरी एक चीज़ भूल गई है, वापस चलो। पहला दिन वापस चले गए, फिर दूसरे दिन वापस कार चलाते हुए गए, फिर कहा कि मुझे कुछ काम आ गया, वापस चलो। ऐसा 4 बार हुआ। और 5वीं बार विश्व किशोर भाई भाऊ कहते, तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? रमेश भाई ने कहा, मुझे क्या समझ में आ रहा है, आप कहते हो रुको तो मैं रुकता हूँ, और वापस चलो तो चलता हूँ। वो कहते हैं मम्मा बाबा आने वाले हैं ना, तो मैं तुम्हारे ड्राइविंग की टेस्टिंग कर रहा हूँ कैसी चलाते हो गाड़ी ऐसे थोड़ी ना तुम्हारे हाथ में दे दूंगा दोनों को स्पेशल गेस्ट है, तुम्हारी टेस्टिंग कर रहा हूँ। देखो इनको पहले से जहाँ बाबा मम्मा को जाना है वहाँ पहले ही जाके सब कुछ सेटिंग करना है, ये इनका काम है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका कहीं नाम नहीं होता है, गुप्त होते हैं ये स्थूल कारोबार सारा संभालने वाले हैं। सब कुछ ठीक तो है ना, ये करने की क्या ज़रूरत है? फिर भी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 4 दिन तक घुमाया उनको, और फिर कहते हैं कि मैं आपके ड्राइविंग की क्या कर रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ। रमेश भाई के घर पे उन्हें बुलाया था तो वो बैठे थे और ये लोग खाना खा रहे थे, तो इनको ऐसा लगा ये तो सेंटर पे रहने वाले हैं, ये हमारे घर का कैसा खाएंगे। पर उन्होंने खुद कहा कि मुझे नहीं खिलाओगे क्या? रमेश भाई कहते हैं कि उस समय हमारे घर में क्या बना था, उंधिया की ये गुजराती डिश है ना, उसमें आलू और ये सब होता है। तो कहते हैं आप खाएंगे? तो वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि आपके घर में सभी पवित्र है। आपका घर कैसा है? सेंटर जैसा ही है। ये भी सीखने जैसी बात है, घर कैसा हो बस सेंटर जैसा, जो पवित्रता सेंटर पे है वही पवित्रता हमारे घर पे, इसलिए मैं खाऊंगा। रमेश भाई ने कहा है, तभी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। किस बात के लिए? नहीं तो हिम्मत नहीं होती थी, कोई मधुबन से आए और उसको कहो कि हमारे घर में खाओ, हम गृहस्थी है। तभी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आगे जाके मम्मा को बुलाया। 18 मास उनके घर मम्मा रही, ये इस वजह से हुआ। तो ये भी कितना उदार चित्त है कि आत्मा परख सकती है कि कौन पवित्र है कौन पवित्र नहीं है। कल की व्यक्त वाणी हमने देखा, दिव्य बुद्धि अर्थात परखना। हरिहंस तुम विद्यापति हो, तुम विद्या देवी हो, सरस्वती हो, तो दिव्य बुद्धि परखती है कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है, किसके घर खाना है किसके घर नहीं खाना है, किसने किस भाव से बनाया है, किस भाव से हमें कोई दे रहा है। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस के पास कई सारे भगत आते थे और कुछ कुछ देकर जाते थे आपके लिए, क्योंकि जैसे ही पता चलता है ना कोई संत महात्मा है तो लोग क्या करते, गृहस्थी लोग तो आते ही रहते, ताकि इनको खुश कर दिया तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। रोज कुछ ना कुछ लाते थे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे वो व्यक्ति जहाँ बैठा है ना, जहाँ बैठ के गया वो गृहस्थी, वो ज़मीन को खोद के फेंक दो, इंटेंशन प्योर नहीं था। या जो भोजन लाते थे वो मैं नहीं खाऊंगा, नरेन को बुलाओ उसको खिला दो, उसको कुछ भी चलेगा। आग है, वैराग है अंदर, उसको चलेगा, मैं नहीं खा सकता। प्योर सोल है। कहते थे भोजन जरा भी अपवित्र का प्रभाव पड़ता है, किसके हाथ का बनाया हुआ खाया उसका भी प्रभाव कितना दिन तक चलेगा। बड़ा सूक्ष्म प्रभाव है भोजन का। यदि सब कुछ कर लिया है पुरुषार्थ में और फिर भी ठीक नहीं चल रहा है अमृत वेला, फिर भी ठीक नहीं है स्थिति, फिर भी भारीपन रहता है, तो एक पुरुषार्थ बाकी है अभी। SFV सॉलिड फूड वैकेशन, जितना हो सके जो प्राकृतिक है जो अपक्व है, और उसमें भी इस भट्टी का तो हमारा लक्ष्य ही क्या है, चबाना बंद पीना। जितना स्थूल भोजन किया जाता है, जितना पक्व भोजन किया जाए, अंदर का राक्षस जागता है, आसक्तियां जागती है, वासनाएं जागती है। योगी अर्थात हल्का, योगी अर्थात अभी भी सो रहा है अभी भी उठ रहा है, हल्का है। ऐसा नहीं जैसे बेहोश हो जाते हैं लोग खाने के बाद, सीधा कोमा में चले जाते, खर्राटे लेने लगते हैं जोर जोर से, पूरा अखंड यहां तक भर के खा लेते। ये हमने यहीं पर सुना था कि आज दोपहर में ब्रह्मा पूजा, आज नाश्ता नहीं करना, दोपहर में वो बनने वाला है तो ज्यादा खाना है ना, इच्छा ही संकल्प ही है ज्यादा खाने का, उसकी तैयारी है। और बाबा का घर है, हमारे बाप का घर है, खिलाने वाला प्यार से खिला रहा है। हमने दादियों का भोजन देखा है, सभी दादियों का क्या खाते थे, इतना सा चिड़िया जैसा, उसमें अगर कोई खाए तो कोई टेस्ट ही नहीं उसमें कुछ नहीं रहता था। निर्मल शांता दादी ने कभी भी कोई भी मिर्ची नहीं खाई, ना शिमला मिर्च, ना लाल, ना हरी, कुछ भी नहीं। करके दिखाओ एक महीना। भोली दादी कभी नमक का प्रयोग नहीं किया, कभी नहीं, करके दिखाओ, आंखों से आंसू आ जाएंगे। इसलिए आए थे क्या ब्राह्मण बनने? तो ये एक बात। बाबा जब भी रेलवे से कहीं जाते थे तो विश्वकिशोर भाऊ क्या करते थे, वेस्टर्न गुजरात रेलवेज में जितने रेलवे के मैनेजर थे उनसे दोस्ती थी। बाबा के लिए ओल्ड फैशन का एक नया डिब्बा लगाते थे गाड़ी में, ये सब पूर्व तैयारी रहती थी, बाबा को पता भी नहीं, ये जाके पहले पूर्व व्यवस्था ये करते थे, कहीं प्रोग्राम है जाके देखना, एक डिब्बा लगाना गाड़ी में ये बहुत बड़ी बात है, कितनी पहचान चाहिए। रमेश भाई लिखते हैं कि उनकी धीरे धीरे जितने रेलवे के अधिकारी थे सबसे पहचान हो गई थी, सब उनको जानने लगे थे। और वो इतनी निरंकारी मूर्ति, और एक धारणा की पॉइंट, इनके जीवन में कभी भी किसी से भी आंखें उठाकर बात नहीं करते थे। वो चेहरा देखा उनका चित्र में, निकालो कोई चित्र, वो बूढ़े बूढ़े से व्यक्ति एकदम से निरंकारी, देखने से ही पता चलता है ये व्यक्ति कैसा होगा, कभी भी आंख उठाकर बात नहीं की किसी से, ये एक धारणा। दूसरी एक धारणा, भोजन करते थे तो संपूर्ण मौन, बात भी कोई करता था तो केवल इशारे से करते थे उस समय अगर करना पड़ा तो। ऐसी ऐसी धारणाएं इनके जीवन में थी, कुछ भी अपने लिए कभी कुछ भी नहीं, मेरे ऊपर कुछ वेस्ट ना हो, कुछ भी नहीं, मेरे प्रति कुछ भी खर्च ना हो, जो है सब यज्ञ का। जैसे बाबा ने अपना सब कुछ वहां कर दिया, जो कल हमने देखा था यशोदा मैया, वो नथनी भी दे दो, वैसा इन्होंने भी अपना सब कुछ वहां कर दिया। ये जो चित्र है, ये व्यक्ति को देखकर ही लगता है कि कितना ये व्यक्ति कितना निरंकारी है। उसका जो पोशाक है, कपड़े है, जिस तरह से उसका पहनावा है, और बाबा को बहुत प्यार था उनसे, अथाह प्यार। उनकी प्रोस्टेट की सर्जरी होने वाली थी, यहां से मुंबई गए रमेश भाई के साथ, डॉक्टर ने कहा अभी नहीं, 7 दिन के बाद आना। वापस आए, वो जो 7 दिन थे, जैसे उन्हें आभास हो गया था, और मम्मा बाबा बाबा को भी जैसे पता चल गया था ये इनके अंतिम समय है, बाबा ने अपने साथ बिठा बिठा के उनको खिलाया। और जब जाने का समय आया, बाबा को कभी भी इंटरेस्ट नहीं था फोटोग्राफी में। पहली बार वो जो दूसरा फोटो है वो निकालो, वो तीनों का, रमेश भाई, बाबा और विश्व किशोर भाऊ, पीछे गाड़ी है उसमें सामान है, वो फोटो हिस्ट्री हॉल, उसमें सामान रखा हुआ है। अब जाने वाले हैं, जाने वाले, हाँ ये वाला, ये सबसे बहुत फेमस फोटो है यज्ञ का, जाने वाले हैं। बाबा कहते हैं चंद्रराज दादा को बुलाओ, वो सोया है, बाबूजी को बुलाओ। उसको सो रहा था, उसको उठाया, किस लिए? फोटो निकालने के लिए। ये फोटो निकाला, ये पीछे सामान है गाड़ी में, दिख रहा है? बस अब जाने की तैयारी में, प्रोस्टेट की सर्जरी है, मुंबई में सर्जरी होने वाली है, जा रहे हैं। तो ये बाबा ने पहली बार, ये तीनों का ये फोटो है, ये खड़े होते हैं, फिर रमेश भाई, संतरी दादी और ब्रिज विश्व किशोर भाऊ ट्रेन से मुंबई जाते हैं, ऑपरेशन होना है। तो रमेश भाई पूछते हैं विश्व किशोर भाई भाऊ से कि बाबा ने तो आज तक कभी ऐसा किया नहीं, फोटो में इंटरेस्ट नहीं था, आज क्यों निकाला? विश्व किशोर भाऊ कहते हैं क्योंकि बाबा की और ये मेरी अंतिम मीटिंग थी। वो कहते कैसे, क्या अंतिम मीटिंग क्यों? वो कहते मैंने ही बाबा से कहा था कि बाबा अब मैं जो भी काम करता हूँ यहाँ, मेरे से अच्छे हैंड, निर्वेर भाई उधर आ गए, जगदीश भाई आ गए, ब्रिजमोहन भाई आ गए, ये सब लोग आ गए हैं, रमेश भाई आ गए हैं, अब मुझे छुट्टी कर दो, अब मुझे फ्री कर दो। बाबा ने कहा तथास्तु। मुंबई पहुंचे, ऑपरेशन हुआ, सिक्स्थ पोस्ट ऑफ डे, ऑपरेशन का 6वां दिन शरीर छोड़ दिया। परंतु ये था कि उनकी इच्छा क्या थी कि ऑपरेशन के समय ही मैं शरीर छोड़ूं, पर इससे एक प्रॉब्लम हो सकती थी, बेचारे डॉक्टर्स उनके ऊपर नाम आता था, इतना दूर से पेशेंट आया, ऑन टेबल डेथ की बड़ी ऑडिट वगैरह चलता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उन पर नाम न आए करके 5 दिन रहे, 6वें दिन शरीर छोड़ दिया। तो उनकी अपनी ही इच्छा थी, जैसे इच्छा मृत्यु का, वजह से बाबा ने ही उनको एक वरदान भी दे दिया था कि मेरा काम अब पूरा हुआ, अब दूसरे योग्य व्यक्ति है जो मेरा काम ले ले, और हम सोचते हैं हम ही योग्य है, मैं नहीं जाऊंगा, और जब तक मैं हूं किसी को दूंगा भी नहीं, और ना ही किसी को सिखाऊंगा, मैं ही मेन हूं, जो जो तुमको आता है, जो जो स्किल्स हमारे पास है, वो सबको सिखाना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, ये भी क्या है, एक सेवा है। अपने जैसे हैंड्स तैयार करना, ये भी एक सेवा है, नहीं तो हम अपने ज्ञान पर कुंडली मार के बैठ जाते। आयुर्वेद क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, क्या कारण था? क्योंकि कुछ कुछ गुरु ऐसे हुए, उन्होंने ज्ञान दिया ही नहीं अपने शिष्यों को, ज्ञान बांटते रहना है। एक बार दादी जानकी कहती है कि मैं मुंबई में थी, नाश्ता चालू था, और अचानक बाबा आ गए, ब्रह्मा बाबा, और बाबा ने कहा क्या कर रही हो बच्ची, नाश्ता, सेवा की क्या? नहीं की। तो बिना सेवा किए नाश्ता? दादी ने कहा उस समय से मैंने संकल्प किया, जैसे ही मुरली क्लास पूरी होती थी सीधा हैंगिंग गार्डन मुंबई, वहां जाना, आत्माओं को जो भी मिले थोड़ा तो देना परिचय। और जब उम्र बढ़ती गई तब दादी का नियम था कि पहले दूसरों को खिलाना, जो भी आता है उसको खिलाओ और फिर मैं खाऊं। तो जब तक किसी को परमात्मा परिचय नहीं देते या किसी की सेवा नहीं करते, केवल परिचय देने की बात नहीं, स्थूल सेवा भी, कोई भी सेवा नहीं करते, तब तक अन्न अंदर न जाए। और ये नियम का पालन बहुत सहज होता है यदि इंटरमिटेंट फास्टिंग करो तो, क्योंकि वैसे भी नहीं खाना है, जो कुछ भी नहीं करते कभी, वो 10 घंटा तो चालू कर ही दो, 8 से 8, रात को 8 बजे खा लिया, अब 8 बजे तक कुछ नहीं। जब इसमें ग्रिप आ जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, तो फिर 10 को 12 कर दो। पहला भोजन जो शरीर में जाएगा वो कितने बाद? 12 घंटे के बाद, 12 आवर फास्टिंग, न खाना न पीना, निर्जल, ड्राई फास्ट, अनहाइड्रस फास्ट, हेब्रियो फास्टिंग। शरीर में बहुत जो टूट फूट हो रही है सब कुछ ठीक होते जाएगा। 12 घंटे ग्रिप आ गई तो पहुंच जाओ 14 घंटा, तब तक कुछ ना कुछ तो सेवा मिली जाएगी, मतलब ये नियम अपने आप फॉलो होते जाएगा। 14 घंटे में ग्रिप आ गई, धीरे धीरे करना है, फिर पहुंचो 16, 16 आवर फास्टिंग, 8 घंटा है खाने का विंडो, उसमें जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो। धीरे धीरे वो हो गया तो चले जाओ 18 तक, यहाँ रुक जाओ, इसको लंबा समय मेंटेन करके रखो, पर ये एक दिन में नहीं होगा, चालू 10 से करो, 12 तक पहुँचो, 14, 16, 18, 6 घंटा खाना। और जिन्होंने ये किया है उनकी ढेर सारी बीमारियाँ वैसे ही ठीक हो गई। लंघनम परम औषधम, कुछ खाने से बीमारियाँ ठीक नहीं होती, न खाने से ठीक होती है। धीरे धीरे शरीर में ऊर्जा आएगी, जिनका वजन कम है वो वजन बढ़ेगा, जिनका ज़्यादा है उनका कम होगा, दोनों काम होंगे, क्योंकि शरीर धीरे धीरे प्रकृति के साथ मिलाप होगा और अपने आप चेंजेस होंगे, दोनों काम होंगे। पर यात्रा जारी करनी है, इससे दोनों काम होंगे, ये भी आध्यात्मिक वाला भी और स्वास्थ्य वाला भी, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के अध्यात्म फेल है। कोई कितना भी कहे मैं सेवा करता हूं, बीमार पड़ गया तो कहां से सेवा? पड़े रहो, दवाइयां खाते रहो ढेर सारी, सेवा लेते रहो दूसरों से, सारे प्रोग्राम कैंसिल, जा रहे थे प्रोग्राम करने बीच में बीमार, हमारी जगह दूसरा चला गया, नहीं कोई गया ही नहीं तो दूसरा, हमारी सेवा, सेवा लेना पड़ रहा है ना, सेवा लेना पड़ रहा है। ये लक्ष्य रखना है कि हमें जितना हो सके जीवन ऐसा हो, शरीर ऐसा स्वस्थ रहे कि हमें किसी की भी लास्ट तक सेवा ना लेने पड़े, और शरीर भी कैसा छोड़ दे, जैसे यशोदा मैया का कल बताया था, कैसे शरीर छोड़ दिया मुरली सुनते सुनते, मधुबन का तट हो, हरि का द्वार हो, ज्ञानामृत मुख में हो, ब्राह्मण परिवार साथ हो, तब प्राण तन से निकले, ऐसा शरीर छूट जाए एकदम सहज, बजाय इसके कि आईसीयू, ट्यूब, लाइन, ड्रेन, वेंटिलेटर, 4 लोग मिलके दबा के दबा रहे, CPR और फिर आत्मा तो जाने लगती है परंतु फिर आ जाती है, वो तो बस जाने की तैयारी में थी, फिर डॉक्टर्स और नर्सेस ने मिलके नीचे ला लिया, अभी रुको 4 दिन और, उसको भी तरस आता होगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, थोड़ी रुकती हूँ इनके लिए। तो चौथे दिन, छठवें दिन शरीर छोड़ दिया, बाबा को फोन किया गया, और जब ये बीमार थे बाबा रात भर जागे थे, यज्ञ में सकाश शब्द का प्रयोग कब हुआ? यहीं पर बाबा ने क्या किया, रात भर जागकर योग की सकाश दी, सूर्य जो किरणें फैलाता है उन्हें प्रकाश कहते हैं, ज्ञान सूर्य जो किरणें फैलाता है उन्हें सकाश कहा जाता है, जो मास्टर ज्ञान सूर्य के द्वारा प्रकंपन फैलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सकाश। और सूर्य जो किरणें फैलाता है उसे प्रकाश। ये नया शब्द है, ये हिंदी भाषा में, सिंधी भाषा में, इंग्लिश भाषा में किसी भी भाषा में, किसी डिक्शनरी में आज तक हमें तो नहीं मिला। नियोलॉजिज्म नव शब्द है ये, बाबा का बनाया हुआ। तो रात भर सकाश देते रहे और जब न्यूज़ आई और बाबा को पूछा गया क्या करे बाबा डेड बॉडी वहाँ लेके आए, बाबा ने क्या कहा, आत्मा तो चली गई, अब क्या करना है, यहाँ लाकर सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया था बाबा, ऐसा ऐसा करेंगे वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ऐसा नष्ट मोहा जैसे कोई मतलब ही नहीं है। वही डॉक्टर बदनाम ना जो बोला ना उस, नहीं तो उनकी इच्छा तो वहीं पर जाने की थी, ऑन टेबल डेथ की इच्छा थी। तो बाबा ने कहा वहीं कर दो सब जो करना है अंतिम क्रियाक्रम। उसके बाद में दादी प्रकाशमणि और संतरी दादी ने मुखाग्नि दी। उसके बाद में 13 दिन जो भोग संदेश लाई जाने के बाद, उनकी बहुत इच्छा थी कि सबको बताए बाबा ने क्या कहा इनके लिए। बाबा ने क्या कहा भोग संदेशी को कि कोई बताने की जरूरत नहीं है, अगर बताओगे तो लोग इसको याद करेंगे फिर उसको याद भूल जाएगी, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, संदेश भी नहीं बताओ। और फिर शील दादी और संतरी दादी 13 दिन के बाद वापस आए तो वो बहुत सारे फोटोज़ लेके आए थे इनके लास्ट, और पर डर था बाबा को बताया नहीं बताया, तो किसी दूसरी बहन ने कह दिया अरे वो फोटो बताओ ना बाबा को जो लाए थे। बाबा ने कहा कौन से फोटो, क्या करना है फोटो का, खत्म कर दो फोटो को, क्या यहाँ मधुबन में किसी ने उसको देखा नहीं, सबने देखा हुआ है तो फोटो देख के क्या करना है, हटा दो फोटो को। कहते हैं किसी शील दादी शायद 3 दिन उनकी आत्मा शील दादी में आई, क्या हुआ उसका डिटेल्स पता नहीं है बट वो भी एक चैप्टर है। कहने का भाव ब्रह्मा बाबा का अगर यहाँ देखो तो कैसा है, नष्टो मोहा, डिटैच्ड, जब तक है तब तक सेवा। बहुत अनन्य बच्चा था परंतु वह चला गया, बस हो गया, उसका पाठ पूरा हुआ, अब भक्ति नहीं चालू करनी है। नहीं तो मनुष्य का स्वभाव है भक्ति का, जो भी चला जाता है उसकी क्या करते हैं हम, थोड़ी बहुत भक्ति तो चालू ही कर देते हैं किसी ना किसी रूप से। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया और उनके जो 12 शिष्य थे विवेकानंद उसमें एक, वो सब लोग तपस्या करने लगे बैठकर, 12 कुमार, और लोग उनको बहुत गालियां देते थे। 12 नगर वो एक जगह है वहां पर मोनेस्ट्री में कि तुम लोग जवान लोग हो तुमको काम करना चाहिए, तुम ये क्या करते हो, पर उनको तो बहुत दूसरे काम थे, सुबह 3 बजे उठना, ध्यान करना, शास्त्र पढ़ना, बहुत सारे जो उनके गुरु ने उनको कहा था तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, और फिर अभी पूरे भारत का भ्रमण करना है वो भी अलग अलग। तो वहाँ पे एक था विवेकानंद का, ये था कि ये डर था कि ये जो शिष्य है ना ये अपने गुरु की भक्ति चालू कर देंगे, तो उन्होंने ये स्ट्रिक्ट रूल किया था कि कहीं पर भी ठाकुर का रामकृष्ण का फोटो नहीं होना चाहिए, पूरे मठ में कहीं पर भी उनका फोटो नहीं होना चाहिए। और एक दिन अचानक वो देखते हैं ये कुछ उनके शिष्य उनके साथी गुरु भाई बैठ के रामकृष्ण का छोटा सा फोटो रखे उसकी पूजा चालू कर रहे हैं। तो वो कहते दिस ओल्ड मैन हैज कम हियर ऑल्सो, ये यहाँ पे भी आ गया ये बूढ़ा आदमी, अपने गुरु के लिए कहते, पर क्या करे अभी ये मनुष्य का स्वभाव है, वो थोड़ी सी भक्ति करना है चालू ही करते थे। यहाँ बाबा ने देखो कितना स्ट्रिक्ट कहा, ना तो भोग का संदेश सुनाओ, सुनाओगे तो लोग उसको याद करेंगे, ना उसके फोटो निकालो, ना उसकी डेड बॉडी को यहाँ लेके आओ, कुछ नहीं, काम पूरा हुआ, नष्ट मो। तो विश्व किशोर भाव एक ये ऐसी आत्मा इस यज्ञ के इतिहास में हुई है कि जिसके जीवन में केवल और केवल क्या था, त्याग और त्याग और त्याग। और एक बात, मम्मा की जब सर्जरी थी 1965 जून, बाबा ने विश्व किशोर भाऊ को भेजा था सारा प्रबंध करने के लिए। कहते हैं स्ट्रेचर को लास्ट तक ऑपरेशन थिएटर में, सामने भाऊ पीछे रमेश भाई, वो लोग लेके गए थे, मतलब हर प्रकार की सेवा, सब्जियां लाने से लेके तो पहरेदारी करने से लेकर तो लिखा पढ़ी से लेकर तो खरीदारी से लेकर तो हर चीज़ की इस आत्मा ने ऐसी कोई सेवा नहीं छोड़ी यज्ञ की। हाँ जी, मम्मा की भी, मम्मा को लेके जाना, सारा प्रबंध करना, पेशेंट की सेवा करना बहुत बड़ा, बहुत बड़ी सेवा है। वो डॉक्टर वाली नहीं, नर्सेस वाली नहीं, स्टाफ वाली नहीं, एज अ रिश्तेदार, पेशेंट के रिश्तेदार की जो तपस्या होती है ना बहुत बड़ी होती है, क्योंकि रात भर जागना पड़ता है उसको, सब कुछ देखना पड़ता है उसको, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको अपना सुख छोड़ना पड़ता है। डॉक्टर तो आके देख के चला जाता है क्या चाहिए, ठीक है ना, गया। नर्सेस इंजेक्शन दे दी चली गई, वहाँ कौन रहता है, कौन रहता है चिमन भाई वहाँ कौन रहता है, पेशेंट का रिश्तेदार। ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी त्याग है इसमें। हमें याद है हम जब MBBS में थे, हमारा मित्र जो था उसको फ्रैक्चर हो गया था और उसके घर वाले को यानी, और वो एक ऐसा मित्र था जिसकी माँ ज्ञान में चलती, पूरी बैच में से वो एक ही व्यक्ति था कि जिसकी माता, वहीं से हमने ब्रह्मा कुमारी शब्द ये सुना था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो वो भाई था, हम लोग फर्स्ट MBBS में, उसको फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया था, तो 5 दिन हम उसकी सेवा में थे, वो सब कुछ किया उसका, क्योंकि कोई अटेंडेंट ही नहीं था वहाँ, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सब कुछ उठाने से लेके सब 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 जो अटेंडेंट सेवा करते हैं ना। तो ये जो सेवा है ये बहुत बड़ी सेवा है वास्तव में, ये एक ही बार करने का अवसर आया इस तरह वाली सेवा, हम तो भूल गए पर वो अभी तक नहीं भूला है। अभी अभी कुछ दिन पहले अचानक उसका फोन आया और उसने बहुत बड़ा क्लिनिक खोला है और वहाँ की जो बहन जी है, क्योंकि माता जी ज्ञान में है, तो जो मुख्य बहन है वहाँ पे भोसरी में, करुणा बहन, उनको उसने बुलाया था उद्घाटन के लिए। वो खुद अभी तो ज्ञान में मतलब इतना नहीं, पर माता जी है। कहने का भाव, इस तरह की जो सेवा है वो सामने वाली आत्मा कभी भी भूलती नहीं है। डॉक्टर भूल जाएगा, नर्स भूल जाएगी, करने वाला वो सब भूल जाते हैं, पर जिसने उस समय हमको उठा के बाथरूम तक लेके गया, वो कितनी बड़ी सेवा है, वो कोई नहीं करने को तैयार होता है इस तरह की सेवा। ये बहुत बड़ी सेवा है। विश्व किशोर भाव ने वो सब भी किया। तो यज्ञ इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर कहो, हीरो एक्टर कहो। तो जो जो बातें आज बताई अपनी डायरी में नोट करनी है, याद करने, कल भी रात में कहा था मेमोराइजेशन, केवल सुनने सुन के खुश नहीं हो जाना है क्लास, क्या करना है यहाँ से जाने के बाद, नोट करो और इन पॉइंट्स में से अब मुझे क्या करना है, मेरे जीवन में कौन सी धारणा है, कमी है जो इस आत्मा में थी, अगर वो आत्मा यहाँ भी है तो भी शायद हम उससे कुछ सीखते नहीं, इसलिए वो क्राइटेरिया नहीं है कि वो है कि नहीं है, हमने देखा कि नहीं देखा, ये जीवन था, अब सीखो इससे। अच्छा, ओम शांति।
चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, चरैवेति यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भास्कर है जिनका रथ सतत चलता, युगों से कार्यरत है जो, सनातन है प्रबल ऊर्जा, गति मेरा धर्म है जो, भ्रमण करना यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना, चरई वेती यही तो मंत्र है अपना। हमारी प्रेरणा भारत है, भूमि की करें पूजा, सुजल सुफला सदा स्नेहा, यही तो रूप है उसका। जिए माता के कारण हम, करें जीवन सफल अपना, यही तो मंत्र है अपना। शुभं कर मंत्र है अपना, चरई वेती यही तो मंत्र है अपना। नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना, यही तो मंत्र है अपना। शुभं कर मंत्र है अपना, चरई वेती यही तो मंत्र है अपना, यही तो मंत्र है अपना, यही तो मंत्र है अपना।